कोई कविता करता है, शब्द का नियोजन करता है, तो वह कुछ कहने के लिए करता है। चित्रकार यदि फलक के ऊपर कुछ चित्रित करता है, कुछ कहने के लिए करता है, तो हम गायक केवल परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ही करते रहेंगे क्या? यह विचार घुलता रहा बरसों तक। उसके बाद रसों की प्रति कुछ दृष्टि खींची। मैं भरतनाट्य शास्त्र का और रस शास्त्र का एक छोटा सा विद्यार्थी हूं और बरसों तक उसका संशोधन करता रहा हूं। इस नाते भीतर की आत्मा ने कहा, मन ने, दिल ने चाहा कि मुझे कुछ अपनी गायकी में फर्क करना चाहिए। यदि मैं कुछ अपने दिल के भावों को प्रकट करना चाहता हूं, इसलिए कुछ लोग की यह धारणा हो सकती है कि वे मुझसे जैसे मैं पहली लंबी लंबी ताने लिया करता था, वैसी ताने अब भी लूं। लेकिन मेरी अपनी समझ है कि तानों में जो रस है वह अद्भुत रस है, चमत्कार है, गले की तैयारी है। किंतु जिनको हम सेंटिमेंट कहते हैं, जिन्हें हम रस कहते हैं, भाव कहते हैं, उसको अभिव्यक्त करने में संभवतः ताने बहुत अल्प मात्रा ही में काम दे सकती है, अधिक मात्रा में नहीं। मेरी यह भी मान्यता हुई है कि कई राग और कई रागिनियां ऐसी हैं जिनमें तान कतई नहीं लेना चाहिए। उनमें उन तानों का प्रयोग करने से रस का भंग होगा। खमाद की या झिंझोटी की या ऐसी रागों की, रागनियों की ठुमरी गा रहे हों और हम गम की ताने बादल की गर्जना के साथ लें, रस का भंग अवश्य होगा। शब दिखला जा हम गाते हों और गम के साथ गर 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 करते हुए हम तान लें, रस का भंग अवश्य होगा, चमत्कार अवश्य होगा, अद्भुत रस दिखाई देगा, पर उसकी भावना का वहां पर अंत हो जाएगा। ऐसा एक दिल ने कहा, संभव है मेरी गलती हो सकती है, मुमकिन है मेरा रास्ता गलत हो सकता है, लेकिन मुझे जो ठीक जचा है मैं उसी राह का पथिक हूं, उसी राह से मैं जा रहा हूं। और अब मैंने करीब करीब दुनिया के लिए मैं गाना छोड़ता जा रहा हूं, अनाउंस कर चुका हूं, ऐलान कर चुका हूं, मुझसे न गवाया जाए, गाने के लिए मुझे मजबूर न किया जाए। मेरी उम्र भी मुझे इनकार करती है और मेरा जी भी अब नहीं मानता है। जी चाहता है मैं अकेले बैठकर घर ही में अपने ही के लिए, मेरे अपने दिल को खुश करने के लिए, मेरी आत्मा को, मेरे परमात्मा को राजी करने के लिए मैं गाऊं, अब मैं लोगों के लिए न गाऊं। किंतु आप में भी तो भगवान विद्यमान है, कभी कभी आपकी आत्मा चाहती है कि ये बुद्धू इतने साल से गाता आया है और हमारे लिए क्यों छोड़ रहा है। लेकिन इस बुद्धू का भी कुछ कभी कभी सुन लेना चाहिए कि हाँ, इसके काले के धौले हो गए हैं बेचारे के, ये बुद्धू नहीं रहा होगा, अब कुछ बुद्धिमान भी और हुआ होगा। सो इस दृष्टि से इस ख्याल को जो सावनी बरवा है मैं बरतना चाहता हूं। उसके शब्दों का, उसके अर्थों का, भाव का परिपोष हो और उसके भीतर जो कुछ कोई वियोगिनी विरहिणी स्त्री सावन के महीने में दुखित है। आपको मालूम है, मेघदूत तो आपने पढ़ा ही होगा, वो आषाढ़ से प्रथम दिवस है, मेघ मास से सानों वाली बात है। आषाढ़ को, आषाढ़ के महीने में मेघ को देखा, यक्ष बेचारा बिल्कुल विफल हो उठा, और उसने अपनी यक्षिणी को संदेश भेजने के लिए मेघ को आदेश दिया, प्रार्थना की। यह भी सावन महीना है, और सावन में उमड़े जो बनवा, छाड़ गए परदेश पिहरवा, ऐसे बहुत से पद सावन के उस मिलते हैं। उसी प्रकार के सावनी बरवा है, उसी सावनी बरवा को आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। उसके भावों की तरफ देखना, कानों की गर्जना में नहीं करना चाहता हूँ। अगर कभी दिल भीतर से हो आएगा, चलो इनकी खुशी के लिए एक आध तान मार ले और बात है, वरना वो केवल आपकी खुशी है, मेरी खुशी नहीं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ भाव में डूबने का, डूब सका तो इत्मीनान है, विश्वास है आपको डुबा सकूंगा, डूब न सका तो मैं कुछ न कर सकूंगा, लेकिन कोशिश है। हर वक्त हर भावों में कलाकार डूबता नहीं है, कभी वो हंसना चाहता है, कभी वो रोना भी चाहता है, पता नहीं किस समय क्या होता है। उस कलाकार के ऊपर आप छोड़ दें, और कलाकार यदि उसमें सचमुच तल्लीन होगा तो आपको अवश्य तल्लीन कर देगा, क्योंकि आपकी आत्मा और कलाकार की आत्मा अभिन्न है, दो नहीं है। धन्यवाद।